तो इसके बाद अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं कि माओं का या औरतों का तबलीग करना क्यों अहम है, क्योंकि माँ के फ़िक्री इख्तलाफ के सबब एहतसाब वालिद का बेअसर होना। आइए ज़रा इसको पढ़ते। एहतसाब, समझ गए क्या होता है? वही बात जो हम पढ़ रहे हैं, तबलीग कह लें। एहतसाब में माओं के गैर मामूली असरात को नुमाया करने वाली बातों में से एक ये है, अगर बाप अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का एहतमाम करने वाला हो लेकिन माँ फिक्री तौर पर इससे मुत्तफिक ना हो। नोट कीजिएगा, यानी बाज़ घरों में बाप रिलीजियस माइंडेड होते हैं लेकिन माएँ नहीं होती, तो बाप की सारी कोशिशों के ज़ाया हो जाने का ख़दशा होता है। बनाना और संवारना तो एक कठिन काम है लेकिन बिगाड़ना तो इसके मुकाबले में बहुत आसान और सहल है। इतनी बात समझ आ गई कि बाज़ दफ़ा बाप कोशिश करता है, बाप कोशिश कर रहा है कि बच्चे को दीन सिखाए, समझाए, माँ नहीं करती, माँ की तवज्जो ही नहीं इधर, तो कोशिशें कामयाब नहीं होती। बच्चों की तरबियत और इस्लाह जान जोखों का काम है, बल्कि शायद दुनिया के मुश्किल तरीन कामों में से एक हो। इस मकसद के हसूल के लिए बसा औकात साल हर साल की मेहनत दरकार होती है, लेकिन बच्चों की बर्बादी दिनों का खेल है। पीछे भी बात हुई, माँ बाप की निस्बत बच्चों के साथ ज़्यादा वक्त बसर करती है, इनके साथ इसका ताल्लुक भी आमतौर पर बहुत ज़्यादा गहरा और मज़बूत होता है। इसलिए अगर बाप की इस्लाही कोशिशों के बावजूद माँ बिगाड़ने पर आ जाए तो बच्चों के इसके ज़ेरे असर होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा होंगे, और शायद हज़रत नूह के बेटे के बिगाड़ में इसकी काफिरा माँ का असर भी शामिल था। बात समझे? बाप चाहते हैं कि बच्चा रिलीजियस हो, माँ नहीं चाहती। माँ ने सारा दिन घर में ज़्यादा वक्त बच्चे के साथ रहना है, माँ का असर ज़्यादा होगा। बाप अगर बुरा भी बनाना चाहे ना बच्चे को, हालांकि कोई बाप नहीं चाहता, लेकिन वो निस्बतन मुश्किल है। बाप अपने बच्चे को नेक बनाना चाहता है ना, ये भी निस्बतन मुश्किल है। इसके अपोजिट माँ चाहे बच्चे को बिगाड़ ले चाहे बना दे। बाज़ माएँ तो अपने बच्चों को उनके बापों के ख़िलाफ़ ही कर देती हैं। इतने कान भरेंगी, अब्बा तो बड़े सख्त हैं, इनकी ना सुनो, अच्छा जाएंगे घर से तो फिर कर लेना, अच्छा अब्बू चले जाएं फिर टीवी खोल लेना, अच्छा ये बाद में दिला दूंगी, अच्छा अब्बा को नहीं बताना, तो माँ ने बिगाड़ दिया बच्चे को। औरत का असर ज़्यादा होता है। बात वाज़ है, ये माँ की निस्बत बाप के लिए बच्चे की तरबियत करना मुश्किल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट थिंग देखिए, दीन वाली औरत के इंतखाब के हुक्म नबवी की एक हिकमत। यानी आप ये तो जानते हैं ना कि अल्लाह के नबी ने दीनदार औरत को निकाह के लिए मुंतखब करने का हुक्म दिया, ये तो बड़ी नोन हदीस है। शायद इसकी एक हिकमत ये होगी कि औलाद की तरबियत में माँ रुकावट बनने की बजाय मुमिद्दो मुआविन हो। मुमिद्दो क्या होता है? मददगार। मुआविन तावुन करने वाली हो। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह के नाते से ये रिवायत नकल की, अल्लाह के नबी ने फरमाया, आप मेरे साथ दोहरा लीजिए इस हदीस को, तुन कहुल मरअतु ली अरबईन। कौन कौन सी वो चार चीज़ें हैं जिसके लिए एक औरत से निकाह किया जाता है? नंबर एक, ली मालिहा वाली हसबिहा व जमालिहा वली दीनिहा फजफर बिजात दीन तरीबत यदाक। औरत से चार असबाब की बिना पर निकाह किया जाता है, इसके माल के सबब, इसके हसब यानी ख़ानदान की वजह से, इसकी खूबसूरती की बिना पर, इसके दीन की वजह से। तू दीन वाली औरत को हासिल कर, तेरे हाथ गुबार आलूद हो जाएं। तो क्या समझ आया? आज की बीवी कल की माँ है, आज की बहू कल की आपके पोते की माँ है, ऐसी है ना। अगर एक दीनदार लड़की घर में आ जाती है तो नई नस्ल संवरती है। तो क्या पता चला कि एक मर्द अगर एक नेक औरत, नेक लड़की से शादी करता है तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि बच्चों को एक अच्छी माँ मिल जाएगी। बस अब आप देखिए, शौहर बीवी की बनती नहीं है क्योंकि बीवी रिलीजियस है, मियाँ ज़रा रिलैक्स्ड माइंड के हैं। कोई बात नहीं, थोड़ा सा सब्र कर लें, चंद साल बाद आप कहेंगे मेरी बीवी ने मेरे बच्चों की तरबियत बड़ी अच्छी की है। ऐसे ही है ना। इसके ऑपोजिट देखिए, बीवी अच्छी नहीं, आपको बड़ी पसंद है, रंग रलियाँ मनाएं, खुश बाज, अल्लाह को नाराज़ करें, जो मर्ज़ी करें आप अपने कामों में काम करेंगे। अब होगा क्या जब आप ये सारे काम कर रहे हैं? यानी आप तो चंद दिन तक उस औरत के साथ, लड़की के साथ खुश रहेंगे, बट कल आप रोएंगे क्योंकि आप कहेंगे इसने मेरे बच्चों को बिगाड़ दिया। तो फिर क्या पता चला, रिश्ते करते वक्त आप भी जब आप अपने बेटों के लिए करें या अपनी बेटियों के लिए करें, तो ये नज़र में रखिए कि कल अगली नस्ल इन्हीं के हाथों से चलनी है, तो रिश्ता करते वक्त इसकी अहमियत का हमें इसे एहसास हुआ। फिर नेक्स्ट देखिए कि बास बीवियों के शोहरों पर अजीम असर। कुछ खवातीन नेकी के काम तर्क करने और गलत कामों के करने के लिए ये उज़र पेश करती हैं कि वो ऐसा अपने मर्दों के ज़ेर असर होने की बिना पे इख्तियार करने पर मजबूर हैं, क्योंकि वो इनके मुकाबले में बेदस्तों पा होती हैं, यानी उनका अपने शोहरों के मुकाबले पे बस नहीं चलता। बिला शक व शुबा अल्लाह ताला ने मर्दों को ख्वातीन पर हुक्मरानी अता फरमाई है, लेकिन इसके साथ साथ इस हकीकत को तस्लीम किए बगैर भी चारा नहीं कि बास ख्वातीन का अपने शोहरों पर बहुत कवी और गहरा असर होता है। गौर व फिक्र से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अंदरून खाना कई एक मामलात मर्दों की ख्वाहिशात और इरादों के बरक्स औरतों की मर्ज़ी के मुताबिक सर अंजाम पाते हैं, और मर्द हल्का फुल्का इजहार नापसंदीदगी करने या वक्ती तौर पर शोर मचाने के अलावा कुछ नहीं कर पाते, बल्कि कितने ही मुँह ज़ोर और सरकश लोग, हत्ता के जाबिर और ज़ालिम हुक्मरान भी, जो अपनी मंशा के खिलाफ एक लफ्ज़ भी किसी से सुनना गवारा नहीं करते, अपनी बेगमात की फरमाइशें रद्द करने की अपने में सकत नहीं पाते। इतनी बात क्लियर हुई? दोहरा दूँ इस बात को। क्या पता चला कि औरतें अपने मर्दों के ऊपर असर रखती हैं। बस ख़वातीन का ये गुमान होता है, मैं इसको गुमान कहूँगी, परसेप्शन कह लीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग कह लीजिए, और वो क्या है कि मेरे शौहर मुझे तंग करते हैं या मजबूर करते हैं। मसलन चले नेकी के काम को छोड़ें, इसको हम बाय पार्ट्स देख लेते हैं। मसलन आप देखिए कि आप कहते हैं कि हिजाब करना, निकाब करना, मेरे शौहर नहीं पसंद करते इसलिए नहीं मैं करती, मेरे शौहर को निकाब नहीं पसंद। हद तक ये बमों के चार बाल, जिसको प्लकिंग करना हमारे उर्फ में कहते हैं, ये मैं अपने शौहर के लिए करती हूँ। कौन सा मर्द है जो आपके बाल आके गिनता है कि कितने और कहाँ से आए हैं और कब निकाल लेते हैं? बहुत ही बेकार किस्म के फिर शौहर हैं, उनको मसरूफ़ कीजिए ताकि वो आपको इतने गौर से ना देखें, है ना? ये सिर्फ हमारा अपना गुमान होता है। बाज़ लोग मजबूरियों के नाम पर, कि हम बड़े मजबूर हैं, असल में मुनाफ़कत कर रहे होते हैं। और मैं अक्सर एक जुमला बोलती हूँ कि बाज़ लोगों की मजबूरियों में निफाक का पर्दा छुप जाता है। अगर वो मजबूरी उनकी दूर हो भी जाए ना, करना उन्होंने फिर भी कोई नहीं था काम, और अगर ख़राब काम था करना था तो उन्होंने फिर भी कर लेना है। तो लिहाजा बीवियों का असर बहुत है। इसके लिए मिसाल किसकी है? फिरौन और उसकी बीवी की। बीवी की फरमाइश पर फिरौन का मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल न करना, फिरौन की बीवी का अपने जालिम व जाबिर और शकी उल कल्ब शौहर फिरौन से मूसा को कत्ल ना करवाने बल्कि अपनी जेर किफालत लाने का फैसला करवाना, इस हकीकत का मुंह बोलता सबूत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिरौन की बीवी की फरमाइश का जिक्र इन अल्फाज में फरमाया, वकालतिल मरअतु फिरौना कुर्रतु ऐनिन ली वलका ला तक्तुलू असा अन यनफअना औ नत्तखिज़हु वलदन वहुम ला यशऊरून। फिरौन की बीवी ने कहा, मेरी और आपकी आंखों की ठंडक है, इसको कत्ल ना कीजिए, शायद कि यह हमें नफ़ा पहुँचाए या हम इसको बेटा बना लें, और वो हकीकत से बेखबर थे। संगदिल फिरौन ने बीवी की इस फरमाइश को पूरा करने के लिए बनी इसराइल के नए पैदा हुए यानी नौमौलूद बच्चों को ज़िबा करने के लिए अपने बनाए हुए कानून को खुद ही तोड़ा और मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी किफालत में लिया। ये वाक्य आप सबने सुना होगा ना? तो फिरौन जैसा जालिम शख्स भी बीवी की मानता था। बात नोट कीजिएगा, वही बीवी जब कल अल्लाह की बनती है तो नहीं मानता, वो उसका दीन था, पर दुनियावी बात मान गया और मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल नहीं किया। तो आप भी याद रखिए, आपके शौहर आपकी बात मानने को तैयार हैं। अगर नहीं मान रहे, जो कि अक्सर हम में से आ रहे कहेंगे मेरे नहीं बस मानते, है आपका गुमान जे? अगर नहीं वो मान रहे तो कुछ ना कुछ आपने ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा किया हुआ है। एक दफ़ा शौहर को एतमाद दे दें अपना, फिर वो आपकी बात मानने को तैयार है। मसलन मैं अक्सर सोचती हूँ कि घरों में 80% झगड़े हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे वो पैसों पे होते हैं। औरतें पैसे मांगती हैं, मर्द पैसे नहीं देते। औरत कहती है सब्ज़ी के पैसे दे दे, मर्द नहीं दे रहा। वो कहती कपड़ों के दे दे, नहीं मिलता। है ये इशू, क्योंकि मर्द ही कमाते हैं। तो अक्सर घरों में मैंने जो देखा क्लोजली कि लोग पैसों पर बहुत झगड़े करते, या मर्जी कहते हैं तुम फजूल खर्च बड़ी हो, क्या ज़रूरत है इतने पैसों की, या औरत कह रही होती मुझे दो, या मर्द कह रहे होते भी कल तो दिए थे, अब क्यों मांग रही हो, जाया करते हो, ये है वो है। अब आप इमेजिन करें, बीवी की शौहर से चक 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 चल रही है पैसों पे, तो क्यों नहीं आप उस शौहर से दोस्ती इतनी कर लें कि वो कह दे बेगम मेरे पास तो और ही बड़े काम है, ये मेरी जमा जुता है, मेरे एक महीने के इतने पैसे आते हैं, 20,000 है, 5 है, 10 है, जो जॉब करते हैं काम करते हैं, या जो एक टारगेट रखा हुआ है कि इस महीने में इस घर के खर्च पे मैंने 1 लाख रुपया रखा है, मैंने पूरा महीना इसमें गुजारना है, अगर एतमाद दे दें तो बीवी को पकड़ा दे एक 10,000 20,000 जो भी है कि भाई आप जाने आपके काम जाने, सारे झगड़े ख़त्म। फिर मियाँ मांग रहा होगा कि मुझे गाड़ी के पेट्रोल के पैसे दे दो। अक्लमंदी, हिकमत से झगड़ों को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन हमारे अंदर बेसब्रापन होता है। बहरहाल, इकरमा रज़ी अल्लाह अन्हो का बीवी की कोशिश से मुसलमान होना, अबू जहल के बेटे इकरमा का अल्लाह की तौफीक से अपनी बीवी उम्मे हकीम रज़ी अल्लाह अन्हा की कोशिशों के नतीजे में इस्लाम कबूल करना, इसी हकीकत की दलील है। ये जो ऊपर आयत पढ़ी थी ये सूरह कसस की आयत नंबर 9 थी, और ये जो वाक्या भी पढ़ें ये आएगा इसी किताब के पेज नंबर 78 और 81 पे हम पढ़ेंगे वाक्या, इसलिए यहाँ उसकी डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पता चला कि इस्लाम तक कबूल कर लिया बीवी के कहने पे, तो बाकी बातों को मानना तो कोई मुश्किल बात नहीं होती। ठीक है, तीसरा वाक्या है तातारियों और तुर्कों का बीवियों की कोशिशों से मुसलमान होना। सिर्फ एक यही वाक्या नहीं बल्कि हमारी इस्लामी तारीख इस बात की तस्दीक करती है कि ऐसे बहुत सारे वाक्यात और भी मौजूद हैं। दो वाक्यात हैं, किसने नकल किए हैं, एक मुस्तशरिक, मुस्तशरिक किसको कहते हैं, हिस्टोरियन, कौन, जो है नॉन मुस्लिम पर इस्लाम की हिस्ट्री लिखता है वाक़ियाती रंग में, जैसे आप किसी क्रिश्चियन के हालात लिख सकते हैं, तो ऐसा मुस्तशरिक था, उसका नाम था T.W. आर्नल्ड। वो लिखता है कि ये दिलचस्प बात भी काबिले जिक्र है कि इस्लाम की तबलीग में सिर्फ मुसलमान मर्दों ही ने कोशिश नहीं की बल्कि औरतों ने भी इस कार्य खैर में हिस्सा लिया है। कई तातारी, तातारी एक कौम गुजरी है आप जानते हैं, कई तातारी शहजादे ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने अपनी मुसलमान बीवियों की तरगीब से इस्लाम कबूल किया। यही सूरत बहुत से बुत परस्त तुर्कों के साथ भी पेश आई जो इस्लामी मुल्कों पर हमले करते थे, कोशिशें करते थे, आते थे वो कुछ और करने, लेकिन वहाँ बीवियों की और औरतों की तबलीग की वजह से वो इस्लाम कबूल कर लेते थे। तो ये बात वाजे हो गई है, यानी हमने ये फोर्थ पॉइंट कवर किया है कि औरत का असर मर्द पे होता है, बीवी होने के नाते बात मनवा लेती है। अब पांचवा पॉइंट है हमारा, 6 में से सेकंड लास्ट पॉइंट है ये कि बेटियों का बाज बापों की नज़र में ख़ास मुकाम होता है। औरतों की अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के मैदान में अहमियत और हैसियत को वाजे करने वाली बातों में एक ये भी है कि बाज बापों की नज़र में इनके जिगर की टुकड़ियों की हैसियत बहुत होती है, वो इनके सुख चैन राहत और सुकून के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, इन्हें इनके मुस्तकबिल की फ़िक्र बेटों के मुस्तकबिल से भी कहीं ज़्यादा होती है, बेटियों को पहुँचने वाली मामूली अज़ियत इनको तड़पा देती है, इनकी निगाहों में बेटों पर आने वाली मुसीबत पर सब्र करना बेटियों पर आने वाली परेशानी पर सब्र करने से कहीं ज़्यादा आसान होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में इस हकीकत को वाजे करने के कई दलाइल है। क्या पता चला कि बेटी के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ है। अब वाक़यात में पहला वाक़या जो है वह नबी सल्लम का अपनी बेटी के नाते से, बेटी का हार देखने पर रिक्कत का तारी होना। इमाम अहमद ने हज़रत आयशा से नकल किया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वे बदर के बाद, यानी अब ये वाक़या कब का है, गज़वे बदर हो गई है, उसके एंड पे कैदी आए थे, उनका वाक़या गज़वे बदर के बाद जब अहले मक्का ने अपने कैदियों की रहाई के लिए फ़दीये अरसाल किए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा ने अपने शोहर अबुल आस, मिलके बोलें ज़रा ये नाम, अबुल आस एक ही लफ्ज़ है, ठीक है, अबुल आस को छुड़ाने के लिए कुछ माल भेजा। इसी माल में वो हार भी था जो कि इनकी वालदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अबुल आस के साथ रुख्सती के वक्त इनको दिया था। हज़रत आयशा बयान करती हैं कि जब रसूलुल्लाह ने इस हार को देखा तो आप पर शदीद रिक्कत तारी हो गई, यानी आप इमोशनल हो गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम मुनासिब समझो तो इस सल्लम की बेटी के कैदी को छोड़ दो और इसका हार इसको वापस कर दो। सहाबा ने अर्ज़ की जी हाँ हम तैयार हैं, यानी सहाबा का ईमान कैसा था कि जब अल्लाह के नबी कुछ काम करने का हुक्म दे देते थे तो आप फ़ौरन तैयार हो जाते थे। आपने कहा हम तैयार हैं ए अल्लाह ताला के रसूल। उन्होंने अबुल आस को छोड़ दिया और हज़रत ज़ैनब को इनका हार वापस कर दिया। حضرت زینب کا ہار دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید رقت کا طاری ہونا، ان کے شوہر کو چھوڑنے اور بیٹی کا ہار واپس کرنے کا صحابہ کو مشورہ دینا، بلا شک و شبہ یہ سب باتیں آپ کے شدید تعلق کی دلیل ہیں۔ سمجھ آ گئی، بات تو واضح ہی ہے۔ اس میں دو تین چیزیں ہمیں اپنے غور و فکر کی ملتی ہیں۔ پہلی بات ہے کہ آپ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کو ہار دیا، تو بس دلیل مل گئی کہ بیٹی کو جہیز دے سکتے ہیں، یہی سوچتے ہیں نا بہت سارے لوگ، اور بہت سارے لوگ دلائل اسی طرح سے جمع کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، ماں ہے بیٹی ہے، جب چاہیں جو مرضی تحفے میں دے دیں۔ یعنی اگر بیٹی کو ہار دیا تھا یا زیور دیا تھا تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ آج بھی کوئی ماں اگر اپنی بیٹی کو کبھی بھی کچھ دیتی ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ دوسرے کو دکھانا، دکھاوا کرنا، اور نہ دے سکنے پر تکلیف محسوس کرنا، سمپل سی بات ہے۔ دوسری بات، اب یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سافٹ ہارٹیڈ ہونا دیکھیں، نرم دل تھے۔ ہمارے ذہنوں میں عموماً آتا ہے جو دین والے ہوتے ہیں اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے سخت مزاج ہوں گے، ان کو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا لگے کہ تمہارا ہار لے لیا، تمہیں یہ مل گیا، وہ گیا۔ نہیں، انسان تھے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو دوسرے کے جذبات سمجھنے والا ہونا چاہیے۔ بہت سارے تعلقات کی خرابی کی وجہ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ہم دوسرے کے جذبات کو نہیں سمجھتے۔ اس کو تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی۔ آپ دیکھیے کہ ہم تبلیغ کرتے ہیں، اب تبلیغ یہ ہے کہ نیکیوں کا حکم، اب ایک لفظ تبلیغ ہمارے یہاں پروفیشنل ہو چکا ہے نا، پروفیشنلی تبلیغ کرنا، کسی گروپ کو جوائن کرنا یا کسی ایک در جگہ سے اٹھنا دوسری جگہ جانا، حالانکہ آپ کا اپنے بچے کو کہنا اٹھو بیٹا نماز پڑھو، تو یہ بھی تو امر بالمعروف ہے نا۔ آپ ان ساری چیزوں کو کرنے کے دوران اگر جذبات کسی کے ہرٹ کر دیں گے نا، کبھی آپ کی بات نہیں مانے گا۔ لکھ لیں آپ یہ بات، میں ایک جملہ اکثر بولتی ہوں، شاید جہاں بھی اس کا فائدہ ہو جائے، کہ دوسرے کی انا کو اجاگر کرنے کی بجائے اس کے ضمیر کو جگا دیں۔ کسی کی انا کو جگانے سے بہتر ہے کہ اس کے ضمیر کو جگا دیں۔ کیسے؟ مثلا انا کب جاگتی ہے؟ آپ کھڑے تقریر کر رہے ہیں، اٹھو بے نمازی، مر جاؤ گے، یہ ہوگا، کافر ہو جاؤ گے، منافق ہو جاؤ گے، یہ ہے وہ ہے۔ اب آپ اٹھ کو اٹھا رہے ہیں فجر کی نماز کے لیے، اور آپ کی زبان اس کے جذبات نہیں سمجھ رہی۔ پہلے تو وہ سویا ہی ہوا تھا، اب اٹھ بھی گیا، تو اب وہ آپ کے کڑوے جملوں سے صبح کا آغاز کر رہا ہے، آپ نے اس کے جذبات نہیں سمجھے۔ دیکھیے، بہت بری بات ہے نماز نہ پڑھنا، فجر کے وقت سونا بہت ہی بری بات ہے، لیکن یہ اس سے بھی بری بات ہے کہ آپ کسی کی بے عزتی کریں، چاہے وہ آپ کا بچہ، چاہے آپ کے برابر کا، چاہے آپ سے بڑا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، شعور کو جگائیں، اس وقت تقریر نہیں کریں، آگے پیچھے ایسا اہتمام کریں کہ وہ اگلے دن رات کو الارم لگا کے وقت سے پہلے سوئیں کہ میں نے کل فجر پڑھنی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ تبلیغ کے دوران بھی، اچھی باتوں کا بچوں کو کہنے کے دوران ہمارا سٹائل بڑا اہم ہونا چاہیے، بڑا اہمیت کا حامل ہے یہ کس ٹون میں بات کی ہے۔ اچھا، آپ کہتے ہیں گھنٹہ بولی پھر بھی نہیں اٹھے، تو یہ تو آپ کو کل بھی پتہ لگ گیا تھا، یہ گولی نہیں کام کی، یہ تو آپ علاج پچھلے 4 سال سے کر رہے ہیں، یہ کارگر نہیں، تو اسٹریٹجی بدلی ہے۔ کسی کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو بچوں کے شکوے کر رہے تھے، نالائق ہے میرے بچے، نکمے ہیں میرے بچے، کوئی میری بات نہیں سنتا۔ موسٹلی ایسے ہی شکوے لوگ کرتے دکھتے ہیں، تو جو سن رہے تھے بات، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی۔ ایج بچوں کی فرق ہوگی، مثال ہے 20 سال کا بچہ بات نہیں سنتا، مانتا نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ 20 سال سے ایک اسٹریٹجی، ایک طریقہ کار اختیار کر چکے نا، فائدہ نہیں ہوا، تو آپ ذرا اسٹریٹجی بدل کے دیکھ لیں۔ مثلا ایک باپ ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ صبح کام پہ دیر سے جاتا ہے، یا مجھے اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے، گھروں میں ایسے ایشوز چلتے ہیں نا۔ اب آپ پچھلے 4-6 سال سے روز صبح ڈانٹ کے اس کو اٹھاتے ہیں، اور زبردستی ڈانٹتے ہوئے غصے میں بولتے ہوئے لے کے جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں بھی لیٹ ہوتا ہوں، مثال ہے نا، تو آپ اگلے دن چابیاں ہی اس کو پکڑا دیں کہ تم جاؤ، میرا دل کیا تو میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، نہیں تو نہیں جاؤں گا۔ ذمہ داری نہیں دیں گے، ہم ہاتھ اپنا اوپر رکھتے ہیں۔ جس دن بچے کے ہاتھ میں چابی آ جائے گی نا کہ کل میں نہ گیا تو دکان ہی نہیں کھلنی، آپ دیکھیے وہ آپ سے پہلے کھڑا ہوگا تیار ہو کے۔ ہم اپنے بچوں کے سر پر ڈالتے نہیں ہیں۔ اسی طرح ہم عورتیں، چلیں ہماری مثال بھی لے لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری بچیاں کام نہیں کرتی۔ نہیں کرتی، کیوں نہیں کرتی؟ میں سچ بتاؤں، آپ ان کو کرنے ہی نہیں دیتی، نہ تو آپ نے ان پر ڈالا اور نہ ان کو احساس دلایا کہ اگر آپ نہیں کریں گی تو یہ کام نہیں ہوگا۔ زندگی میں یاد رکھیے، 90% لوگ وہی کام کرتے ہیں جس کو ان کو یقین ہوتا ہے کہ اگر میں نے نہ کیا تو یہ نہیں ہونا۔ جیسے آج میں آپ کے پاس ادھر آئی ہوں نا، मुझे पता था अगर मैं आज आपको आके ये किताब इस तरह जैसे अब शुरू की है मैं नहीं पढ़ाऊंगी तो आप में से कोई उठ के नहीं पढ़ाएगा या कोई और दूसरा नहीं पढ़ाएगा, तो मैं आ गई हूँ। मेरे लिए सबसे अहम काम क्या था कि मैं इधर पहुंच जाऊँ। मुझे शक पड़ता ना कि मैं ना भी गई ना तो आप में से कोई आएगा और सारे उसको इसी तरह खामोशी से सुन लेंगे जैसे मुझे सुन रहे हैं, तो शायद मैं ना आती। क्या यकीन मुझे लेकर आया कि ये काम मैंने ही करना है। हर काम जो आप कर रहे हैं या जो काम आपको करना है या कराना है, पहले ये यकीन अगले को दें कि बेटा ये आप ही करेंगी। आप काम करवाना चाहती हैं ना, आप तमाशा देखें दूर बैठ के, आप कहते हैं मुझे पता था इसने कोई नहीं करना, मैंने कर दिया। अब वो करने आएगी ना काम पहले हुआ हुआ, तो होगा क्या नुकसान? आप सब मेरी बातें समझ रहे हैं। यही मामला सास बहू का होता है। मैंने चंद दिन पहले कराची में दर्स में सास बहू के रिश्ते में भी ये मिसाल दी थी कि बाज़ सासें ये शिकवा करती हैं कि हमारी बहुएं काम नहीं करती, लेकिन हकीकत इससे फ़र्क है। जैसा ही केस आया था, बाहर की बात है, मुझे लगा सास की बात सुन के कि ये तो बड़ी मजलूम औरत है, इस उम्र में इसको इतना काम करना पड़ता है, तो बहू जवान है, सो रही है, खा रही है, पी रही है, काम नहीं कर रही। तो जब मुझे मौका मिला, ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के नबी की बताई हुई बात के दोनों तरफ की बात सुन के किसी को मशवरा देना चाहिए, जब उनकी बहू से बात की तो वो तो उससे भी ज़्यादा दुखी थी। कहती अम्मी जान मुझे करने नहीं देती काम, मैं काम करूँ मुझे 100 100 कीड़े डालती हैं। तुम सही नहीं करती, तुम चावल धोती हो तो आधे गिरा देती हो, तुम चूल्हा बड़ा फैलाती हो, ये करती हो, मेरी बेइज्जती करती हैं। और जब कोई आ जाता है तो कहती हैं कि ये काम नहीं करती। बात समझ रहे? मैं हर केस को तो नहीं जानती, लेकिन उस केस में कसूर सास का था। लेकिन आप अपने ऊपर लेकर सोचें, देखिए एक ही जिंदगी है। कुछ लोग बड़ी कामयाबी से हर किरदार अदा कर लेते हैं, हम क्यों नाकाम है? और मेरी बात एक नहीं मानता, फिर दूसरा भी नहीं मानता, फिर तीसरा भी नहीं मानता, तो वो तीन गलत हैं। मान ले हम तो सोचते हो तीन ही गलत हैं, बल्कि बाज़ औरतें कहती हैं मेरे घर में तो कोई एक भी ठीक नहीं है। पहले इनका बाप नहीं मेरी मानता था, अब इसके बच्चे नहीं मानते, जैसा बाप वैसे बच्चे, ये ताने सुने होंगे आपने कड़वे कड़वे। वो तीन गलत हैं, तो क्या ये नहीं पॉसिबल कि आप ही गलत हो? टोन तो चेंज करें, स्टाइल तो चेंज करें, फिर देखें क्या होता है। काम पड़ा हुआ है सामने आपके, आपको पता है कि ये किसी और ने करना है, आपको हक नहीं उसको करें, ऐसे गुजर जाएं जैसे वो कहते हैं कि मर्रू की रामा, फिर उसका चर्चा भी ना करें, दूर बैठ के देखें। चेस करने वाले ज़्यादा अच्छे इंस्ट्रक्टर होते हैं हर वक्त सर पे सवार होने वालों से। कोई करने लग जाए चमचा ऐसे फेर दिया, ये कर दिया, नमक डाल दिया, चीनी डाल दी, यानी मैंने ऐसा भी देखा है कि अगर कोई काम कर रहा है ना तो दूसरा आके उसके अंदर अपनी मर्जियां कर रहा है। पक्का पक्का मुझे कई ऐसे केसेस सामने आते हैं कि एक बहू थी तो कहने लगी कि मेरा मसला ये है कि जब मैं खाना पका के सब रेडी कर करा के मिसाले बैठती हूँ, जो भी होता है नमक डालना, आपको होता है हमारे कल्चर का, अगर खाना होगा धनिया डलेगा, चीज़ें डाल के तैयार करके जाती हूँ, चलो शुक्र है, तो जब खाना सर्व करने आते हैं तो उसमें शोरबा बना होता है। क्या हुआ, सास जी ने एक डब्बा पानी का डाल दिया, शोरबा बना दूँ? अब मुझे बताएं वो खाना जब खाना है हर बंदे ने कहना ये क्या पकाया तुमने, अब वो क्या सब में बताएगी कि अम्मा जी ने इसमें शोरबा डाल दिया? बात समझे? देखिए एक ही जिंदगी है, इसको जाया ना करें जी, और जीने दो। ये जो अपने अंदर का एक बुखार है ना, जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता, ये निकाल दें, सब आपके मामले ठीक होंगे, सब करेंगे आपकी खिदमत, सब करेंगे आपके काम। क्यों? कि आप अगले के जज्बात को समझें। वो वक्त याद करें जब आपने काम शुरू किया था, रोटी पकानी भी आती नहीं थी और आपने रोटी जिस दिन पकाई होगी पहली, हो सकता है साथ हाथ भी जल गया होगा। आज आप देखिए आप जैसा कोई कुक ही नहीं है, कहाँ से आप माँ के पेट से सीख के आए थे? तो ये बात समझें, कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी। मैंने देखा दो मुख्तलिफ लोग एक ही इशू पे परेशान हो रहे होते हैं और वजह दोनों के बीच में बहुत हद तक कम्युनिकेशन गैप होता है, होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं करती। हम बात दफ़ा उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं अपने तौर पे कि बस फुलां आएगा ये सारा काम कर देगा, मुझे इस वक्त गर्म रोटी बना देगा। अच्छा मिसाल है कि आप बैठी हैं, आप कहती हैं देखना अभी आएगा कोई और मेरी बेटी आएगी और वो मेरे लिए गरम गरम रोटी बना के रखेगी। आप सोचे बैठे हैं, बेटी को बताया नहीं, उसको एक्सपेक्ट नहीं करवाया कि मैं इस वक्त क्या सोच रही थी। उम्मीद तो थी लेकिन अगले को एहसास ही नहीं दिलाया, उसने कह नहीं कि वो आई, उसने अपना सालन निकाला, रोटी खा के चली गई और अब मुँह देख रहे आप, करें इसने मुझे खाना ही नहीं पूछा। बस कह दें, बोल दें, थोड़ा रिस्क लें, थोड़ा ख़तरा मोल लें, आप देखेंगे कि आपके सारे मैटर ठीक हो जाएंगे। गलत है तो कीजिए, आपने किया था भुगतिए, आज ख़राब करेंगी कोई बात नहीं, कल ठीक भी तो आप ही करेंगी ना। लेकिन आप स्पून फीडिंग करेंगे, हर वक्त पकड़ के चलाएंगे, तो आपके बच्चे कभी भी चलना नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो क्या हमने ये पॉइंट देखा कि दूसरों के जज्बात को समझें, क्लियरली बता दें। मेरा दिल करता है कि मैं सुबह उठूं तो मुझे चाय का एक कप मिल जाए, मिसाल है। बता दीजिए अपनी बेटी को, आपके पास घर में कोई मेड है उसको बता दीजिए कि बेटा सुबह उठती हूँ मुझे चाय का कप चाहिए। ये हर रोज़ दिल में कुड़ना और जलना और कुड़ना और मुंह पे ना कहना, और वो बात मुंह पे ना कही जाए तो दिल में तो रहती है, तो ये फिर गैप बंद। इसी तरह बाप और बेटे के ताल्लुक में खराबियाँ, वो हम तो नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि हम माएँ, हमें अपनी फिक्र है। कई बाप ऐसे हैं, यानी मुझे हैरत होती है, सिस्टर्स बात करती हैं, कहती मेरे बच्चे अपने बाप से बड़े दूर हैं, अब्बा घर में आते हैं तो एक इधर घुस जाता है, एक उधर घुस जाता है, एक उधर घुस जाता है, अब्बा से बात नहीं करते, वजह कि वो बीच में पड़ते हैं, गैप्स हैं, कि ये कर दिया वो कर दिया। बैठ जाएं, खुल के बात कर लें, रो लें, प्यार कर लें, हाथ पकड़ लें, बेटा मेरा ये दिल करता है आप मेरे लिए ये किया करें, आप कर सकती हैं तो कर दें। बेटा कर देता है तो खुशी, नहीं है तो फिर उम्मीद छोड़ दें। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं हमें तो किसी से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन दिल में होती है, हम झूठ बोल रहे होते हैं। अगर आपको उम्मीद नहीं है, पता नहीं, तो आप फिक्र ही नहीं करें, फिर आप उसका गौर ही नहीं करेंगे, जिक्र ही नहीं करेंगे। समझें कि इस वक्त मेरे से कौन क्या चाहता है। और वो पंजाबी में एक जुमला बोलते हैं ना कि वेले दी नमाज तक वेले दियाँ टकरा, बाज़ दफ़ा वक्त गुजर जाए तो फिर तो वो खिदमत का मौका ही नहीं रह जाता। तो बहरहाल ये एक लॉन्ग टॉपिक है, अगले वाक्य में देखिए हज़रत फातिमा के साथ नबी सल्लम का ताल्लुक कैसा था, यानी एक बाप और बेटी का ताल्लुक भी देखिएगा। इमाम बुखारी ने इस रिवायत को मिसवर बिन महरमा, क्या लफ्ज़ है, मिसवर बिन महरमा, ये सहाबी हैं, इनसे ये नकल किया है। अल्लाह के नबी ने फरमाया फातिमा तो रदी अल्लाह अन्हा, जी आप पढ़ लें साथ, फातिमा तो रदी अल्लाह अन्हा बद अतुम मिन्नी फमन अखदबहा फकद अखदबनी। फातिमा मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है, जिसने इसको नाराज़ किया इसने मुझे नाराज़ किया। देखिए हज़रत फातिमा की शान में ये कितनी बड़ी बात है अल्लाह के नबी की। और सही मुस्लिम की रिवायत में क्या आता है, यूज़ीनी मा आज़ाहा, जो चीज़ इसके लिए बायस अज़ियत है वो मेरे लिए भी बायस अज़ियत है। यानी अपनी बेटी से इतनी मोहब्बत अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, क्या पता चला कि अल्लाह के नबी के ये अल्फाज हज़रत फातिमा से शदीद मोहब्बत, ताल्लुक़ और दिल के लगाव के जज्बात को वाज़ेह तौर पर नुमायाँ कर रहे हैं। इसी तरह हज़रत फातिमा के लिए अल्लाह के नबी कैसे इस्तकबाल के लिए खड़े होते थे, आपका बीबी फातिमा से गहरा ताल्लुक़ था, इस्तकबाल की कैफियत क्या होती थी। मुस्लिम में ये रिवायत है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से, कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ आपके पास मौजूद थीं, इनमें से कोई भी वहाँ से ना गई थी, फातिमा आई, इनकी चाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल से मुख्तलिफ ना थी। जब आपने इनको देखा तो दूसरे लफ्ज़ों में इनका इस्तकबाल किया, क्या कहा, मरहबन बिबनती, खुश आमदेद मेरी बेटी। फिर आपने इन्हें अपने दाएं जानिब या बाई जानिब बिठाया, और कोई ये ना समझे कि अल्लाह के नबी ने एक ही मरतबा अपनी गोशा जिगर का इस गर्म जोशी से इस्तकबाल किया था, बल्कि ये तो आपका इनके इस्तकबाल का हमेशा का तरीका था, यानी दायमी तरीका था। एक बार नहीं तो ना, कभी प्यार आ गया तो एक दफ़ा जोश में किया, जब भी हज़रत फातिमा आती थी तो अल्लाह के नबी उनका इस्तकबाल इसी खुशी से करते थे। इमाम हाकिम ने हज़रत आयशा से रिवायत नकल की, कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह के उठने बैठने के तौर अतवार में आपकी बेटी फातिमा से ज़्यादा इनके साथ मुशाबहत रखने वाला कोई नहीं देखा। यानी हज़रत फातिमा की लुक अल्लाह के नबी से मिलती थी, बस वह शक्ल नहीं मिलती, उठान मिलती, बहन भाइयों की मिलती है, दो बहनों की बहुत मिलती है, माँ बेटी की मिलती है, तो हज़रत फातिमा हज़रत खदीजा से ज़्यादा नबी सल्लम से मिलती थी। जब भी वो आपके यहाँ दाखिल होती तो आप इनकी तरफ, यानी इनके इस्तकबाल के लिए उठते, इन्हें चूमते और इन्हें अपनी जगह में बिठाते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके यहाँ तशरीफ़ ले जाते तो वो भी अपनी जगह से उठती, आपको चूमती और आपको अपनी जगह में बिठा देती। तो मोहब्बत का ताल्लुक दिख रहा है कि बापों का बेटियों से ताल्लुक होता है और होना चाहिए। अच्छा, आज हर रिश्ते में आप फील करें ना अगर, तो वो बेतकल्लुफी और एंगल की हो गई। यानी अब मैं यहाँ थोड़ा सा बाप बेटी के ताल्लुक की भी बात करने चाहूँगी, क्योंकि ये वो ताल्लुक होता है जिसकी बुनियाद पे बहुत सारे टेढ़े मामले सीधे हो जाते हैं। मुझे बहुत कम लगता है आज के दौर में कि बच्चे माँ या बाप या माँ और बाप के साथ बिल्कुल लयर मूड में बैठे हैं, बेतकल्फी में। जैसे आप देखिए कि अक्सर होता ऐसे ही था पहले दौर में, खाना खाने बैठे, डाइनिंग टेबल पे बैठे, घंटा घंटा बातें चल रही हैं, हंसी मजाक, बातचीत, मशवरे सलाह होते थे, होता था कि नहीं। जब खाना इकट्ठे खाते हैं ना लोग, ये भी एक टिप याद रखें, उस वक्त घर के लोग क्लोज होंगे। पता नहीं क्या बात है, खाने का वक्त ऐसा होता है जिसमें लोग आप एक दूसरे से बातें करते हैं, आप सुनाएं आपने क्या किया, आज क्या किया। और जब सारे बोलते हैं ना, तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है कि दिल की बातें खुलती हैं। क्योंकि शायद मुझे ऐसे लगता है कि खाने का वक्त दौरानिया ऐसा होता है कि जिसमें कोई उठ के नहीं जाता, मोस्टली आमतौर पे तो लोग उठ रहे हैं, एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक बैठ रहा है, एक सो रहा है। आप उसको घर कहेंगे? ये तो होटल हो सकता है। होटल में हर बंदे की ट्रे एक अलग वक्त पे लग सकती है, क्योंकि हर एक का खाना भी अलग है, ऑर्डर फ़र्क है। मैंने उस दिन भी बहुत लंबी बात की इस पर, बहुत ही डिटेल से की, कराची का जो हमारा दूसरा दर्स था, कि बच्चों के ताल्लुकात माँ बाप से क्यों बिगड़ते हैं। आप सुन के देखिए, ये जो बातें आज हमारा अभी तक मौजू चल रहा है, इसकी काफ़ी सारी चीज़ें आपको डिटेल्स उसमें और भी मिलेगी। वो टॉपिक ही ये था कि मसला क्या है कि सब एक चीज़ नहीं खाते और एक वक्त पे नहीं खाते। जो एक वक्त पे नहीं खाते और एक चीज़ नहीं खाते, वो एक दूसरे के जज्बात कैसे समझेंगे? एक ने फिश खाई, उसकी तो भी हजम होगी फौरन, दूसरे ने पाए खाए हुए तो उसको भी भूख ही नहीं लगी। एक ने करेले खाए हुए, उसके पेट में गर्मी लग रही है, उसको गर्मी लग रही है, वो कह रहा है कोई ठंडी चीज़ लाओ, और दूसरे ने शलजम खाए हुए, उसको पता चला ये नहीं है। सारे एक साथ एक जगह बैठते हैं, बातें। चलो आज नहीं भी अच्छा लगा, आज उसमें मैंने टिप्स दी थी कि कैसे करें। बाद में मुझे एक औरत कहती, रियली ये पॉसिबल है? मैंने कहा ये पॉसिबल है। मैंने सिर्फ ये कह दिया उनको कि 7 दिन का मेन्यू बना लें, आपको भी कह देती हूँ 7 डेज का मेन्यू पहले बना लें, आज आपकी मर्जी का, कल दूसरे बच्चे की, परसों तीसरे की, चौथा अब्बू का, दादी का, ये नानी का, 7 लोग हैं, हर दिन एक बच्चे की पसंद की चीज़ें, और 6 ने खानी है। क्यों खानी है? क्योंकि परसों सब मेरी पसंद की खाएंगे। ये घर से 2-3 खानों का सिलसिला ही ख़त्म। खाना तो खा लो, नहीं खाना तो भाग जाओ। जब एक खाएंगे, एक साथ बैठेंगे, ताल्लुक बनेगा, फिर दिल की बातें, दुख सुख। बहुत कम लोग एक दूसरे से अब दुख सुख करते दिखते हैं, वजह क्या है? वो एक वीडियो देखी थी, आप लोगों तक भी ऐसी चीज़ें पहुंचती हैं कि ये जो गैजेट्स हैं ना हमारे हाथों में, इन्होंने भी आज हमें दूर कर दिया एक दूसरे से। डाइनिंग टेबल ऐसे जैसे भी है, इधर बाप बैठा हुआ है, इधर माँ बैठी हुई है, यहाँ 2 बच्चे बैठे हुए हैं, सब खाना खा रहे हैं, और बाप सबको यूं घूर रहा है। इतने में क्या होता है कि बाप के हाथ से यहाँ से कोई चीज़ नीचे गिरती है, तो वो ज़रा सा उसको लेने के लिए नीचे झुकता है ना, तो वो बच्चे भी और बीवी उनके आगे ये ऐसे ही फ़ोन रखा हुआ है जैसे ये रिकॉर्डिंग वाला फ़ोन रखा हुआ, फटाफट पकड़, सारे तीनों खेलने लग जाते हैं। उतनी देर में बाप ऊपर मुंह करता है, तो सारे फिर सीधे होके छोड़ के बड़े मिस्कीन से बन के खाना खाने लगते हैं। दोबारा फिर ऐसा ही होता है, बाप के हाथ से फिर कुछ गिरता है, तो बाप को शक पड़ जाता है कि जब मैं नहीं देख रहा तो वो फोन से खेल रहे होते हैं। यानी मतलब ये कि खाना खाना दुश्वार हुआ हुआ है कि उसके दौरान भी फोन देखना है। तीसरी दफा जब उसके हाथ से ब्रेड की टोकरी गिरती है, तो वो नीचे तो दिखाते हैं कि वो भी नीचे जो है वो कोई फोन से खेल रहा है, वो चीज़ें जान के गिरा रहा है कि मैं भी मैसेज चेक कर लूं, और जितनी देर में वो मैसेज चेक करते ऊपर वाले भी कर लेते हैं। अब आप मुझे बताएं, एक टेबल पे बैठे लोग अपने फ़ोन को खेल रहे हैं, उसको देख रहे हैं। आज तो लोग एक दूसरे के सब बैठे हुए भी नहीं होते, कानों में कुछ हो रहा है, माँ चीख रही है, बाद में पता चला उसने सुना ही नहीं, उसने हेडफोन लगाए हुए थे। तो ये सारी चीज़ें गैर महसूस तरीके से हमारे घरों के माहौल को वेस्टर्नाइज ही कह दूँ, खुश होंगे हम बड़े वेस्टर्नाइज हो गए हैं, लेकिन यकीन करें दूरियाँ पैदा हो रही हैं। आज वो जज्बात की गर्मी नहीं दिखती रिश्तों में जो पहले थी। सच बताएं, पहले दौर के मेहमान के घर में आने और आज के मेहमान के आने में फ़र्क है कोई? अल्लाह हू अकबर। एक मेहमान आ जाता तो सारे सर पे सवार हो जाते थे, बातें, कहानियाँ, उधर की बातें, इधर की बातें। आज क्या ताल्लुक है हमारा? ये कोई ताल्लुक है? ये ताल्लुक नहीं है। इससे ज़्यादा ताल्लुक तो उनका होता है जिनके साथ दिल जुड़े होते हैं। ये सारी चीज़ें गैर महसूस तरीके से हमारे घरों से नेकियों के माहौल कम करती जा रही हैं। हर बंदा अपने सर्कल में फिर रहा है, उसके अपना जीना, अपना मरना है, खुशी नहीं मिलती फिर इससे। आज भी अगर आप चाहें तो ये सारी चीज़ें समझकर आज से अपने घर के माहौल को हम सब बेहतर कर सकते हैं। शौहर बीवी एक साथ नहीं बैठ के खाते, खा रहे हैं तो वो फ़ोन पे बातें कर रहे हैं, दिल दिमाग कहीं है, सफ़र पे चले जाएं रास्ते में आधा वक्त तो फ़ोन पे बातें हो रही हैं, और इसी तरह से आप देखते जाएंगे ना, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे गैर महसूस तरीके से शामिल हो गई हैं। बात समझ रहे हैं? हम लोग एक किसी दावत में गए, अभी ये पिछले भी महीने की बात है, नॉर्वे की बात है, तो सिस्टर्स की गेट टुगेदर थी, मुझे भी साथ ले गई ज़बरदस्ती, तो एक मैंने बड़ी खूबसूरत चीज़ देखी, फर्स्ट टाइम ही देखी, कि घर में घुसते ही साइड पे ऐसे रैक जैसे होते रखे हुए, तो उसमें बड़ी खूबसूरत सजी हुई एक बास्केट रखी हुई थी और उसके ऊपर एक ऐसे स्टिकर लगा था, फ़ोन की तस्वीर थी। तो जूं ही हम अंदर गए, होश ही मिली, तो उसके बाद उन्होंने बास्केट हमारे आगे कर दी। मुझे समझ आया कि शायद हमें फ़ोन दे रही हैं, बांट रही हैं। वो जो दूसरी थी उन्होंने कहा कि ये बास्केट अब एक नया ट्रेंड बना है कि जब सिस्टर्स दोस्तें लंचेस पे और खानों पे मिलती हैं तो वो कहती हैं कि रिक्वेस्ट करती हैं कि आप आएँ अंदर, तो ये फ़ोन इधर रख के इसको इधर बाहर ही छोड़ दें और आप अंदर जाएँ। क्यों? कि एक जगह दावत में बैठी सिस्टर्स भी अपने अपने फ़ोनों से खेल रही होती हैं, तो जिसका फ़ोन आएगा बाद में कोई उठा के दे देगा। तो मुझे अच्छा लगा। आप आज भी देखें कई ऐसे लोग हैं पढ़े लिखे मुहज्जब, रात को जब घर में आते हैं ना शाम को, तो वो अपने फ़ोन्स वहाँ बंद करके छोड़ देते हैं। क्यों? कि अब हम घर में आ गए, ये हमारा फैमिली टाइम है। एक ब्रदर थे, अभी इसी वीकेंड पे हम किसी को ढूंढ रहे थे, कोई काम था उनसे, पूरा संडे का दिन आधा गुजर गया, उनको काम ज़रूरी था तो वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। अखीर जो हमारे साथ लोग थे उन्होंने कहा चलो उनके घर जाते, ना होंगे घर में तो वापस आ जाएंगे। खैर जब गए ये लोग उनको ढूंढते हुए तो घर में ही थे। बहुत अच्छी बात है, गौर से सुनिएगा। कहते हैं मैं सैटरडे की शाम को जब घर आता हूँ ना, तो मैं अपना फ़ोन ऑफिस में छोड़ के आता हूँ, अपना सेलफोन, और मंडे को जाके सुबह ऑन करता हूँ। मैं पूरा संडे कभी अपना सेलफोन नहीं पिकअप करता क्योंकि ये मेरा टाइम है। लोगों ने कहा इमरजेंसी हो जाए, ये हो जाए, उन्होंने कहा घर का फ़ोन है, और मैं अपना संडे जो है वो बिल्कुल अपने कस्टमर और अपने क्लाइंट से फ्री होके गुजारता हूँ। बहुत अच्छी बात है। बहरहाल
मैं
ठीक
एक
है
बात यहाँ ऐड
जी,
करूंगी, इन गैजेट्स ने हमें दूर वालों के नजदीक कर दिया और नजदीक वालों से दूर कर दिया।
एक्सीलेंट, बहुत अच्छी बात आपने की। मैं इसको दोहरा देती हूँ कि इन गैजेट्स ने हमें दूर वालों से करीब कर दिया। हमें ये पता है व्हाइट हाउस में इस वक्त क्या हो रहा है और बकिंगम पैलेस में क्या हो रहा है, लेकिन एक घर में रहने वालों की खबर नहीं है।